Similar statements are made in the Srimad Bhagavatam.
ऐसे कुछ वाक्य श्रीमद् भागवतम में भी कहे गए हैं.
There are two classes.
इसमें दो श्रेणियां हैं.
In human society.
मनुष्य समाज में.
That is called the pilgrimage of the crows.
जो कहते हैं कि कौओं का तीर्थ.
And the pilgrimage of the swans.
और जो कोयले हैं उनका तीर्थ. हंसों का तीर्थ.
In this shloka, the devotees are compared to cuckoo, like cuckoo is a type of bird.
यहां पर भक्तों की तुलना कोयलों से की गई, कोयल से की गई.
Cuckoos are famous for sweet singing.
और कोयल बड़ी मशहूर होती है उनकी मधुर
वाणी.
शायद पता नहीं आप लोगों ने कभी कोयल को सुना है दिल्ली
शहर.
हम देखते हैं जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है.
The dominant bird in the cities is crow.
और जो अधिकांशतः यहाँ पर चिड़िया हमें दिखाई देती है वो कौआ.
So we have first hand experience.
और हमें मतलब पहला साक्षात्कार कौवे
का. Right down the street is the filthy, stinking, you know, garbage dump.
और आगे इसी सड़क में आगे जाएंगे तो कूड़े का ढेर है.
So what kind of bird you find there?
और वहां पर आपको कौन सा चिड़िया दिखाई देती है, पक्षी दिखाई देती है?
Mostly crows. The crows dominate. Some other birds may come.
अधिकांशतः हमें वहां पर कौवे दिखाई देते हैं.
Generally crows are into dominating.
और कौओं का स्वभाव होता है कि वो
बड़े
को जमाने वाले होते हैं.
Very large, strong bird, you know. So if a smaller bird comes along, a crow can easily chase it away.
तो वो बड़े शक्तिशाली पक्षी होते हैं तो कोई दूसरी चिड़िया आती है तो उसको वहां से भगा देते हैं.
Their taste is for filthy things.
और उनका स्वाद जो है वो गंदी चीजों में होता है.
Never come to class without a notebook. Where's your notebook? Your excuse is it's a rainy day. Is that your excuse? Always come to class with a notebook. You can put it in a poly bag on a rainy day, you know. He knows English. What's his lame excuse?
He's saying, Maharaj, that those clothes are bad for bags or something.
Well, you have to put your notebook on poly bag or shastra or anything like that. You know, they can't get wet. On a rainy day, you put it in poly bag. So in this kind of weather, you should keep poly bags with you.
So इस मौसम में क्योंकि बारिश हो रही है तो ऐसा ना हो कि आप किताब लेके क्लास में ना बैठें. आज कह रहे हैं कि आप अपने थैले में किताब रखिए, गीली ना हो, लेकिन किताब लेके जरूर बैठे.
दिस इज मानसून सीजन. सो इन मानसून सीजन यू कैन एक्सपेक्ट दिस मच रेन.
तो स्वाभाविक है कि अभी वर्षा ऋतु है तो यहां पर वर्षा तो होगी नहीं.
पेइंग अटेंशन. आर यू पेइंग अटेंशन? यू
पंकज हो, आपका स्टॉपिंग है.
What did I say? Oh, you've got your notebook. He has his notebook after all.
So, Maharaj, if you are
just being lazy, you see. If you want to advance in Krishna consciousness, you cannot be lazy.
So, if you want to advance in Krishna consciousness, you cannot be lazy.
And these are the seeds. Not having the notebook and not keeping the notes are the seeds of a wrong attitude. I have to tell you, look, I have a right to say that. I certainly have a right to say that.
तो जो है वो अगर हम लोग ये दिखाते हैं कि अगर हम कॉपी नहीं लेके आते तो ये हमारे आलस के बीज हैं जो ये दिखाई देते हैं. और मेरा अधिकार है कि मैं आप लोगों को इस चीज में करेक्ट करूं ताकि आप कॉपी जरूर लेके आए और नोट्स बनाएं जो महाराज कह रहे
हैं. Therefore, I have a right to teach what works and what does not work in Krishna consciousness. I have a right to teach that because I'm successful by the mercy of Prabhupada.
तो महाराज कह रहे हैं कि मैंने कृष्ण भावना अमृत में 48 ईयर्स से ऊपर हो गए हैं तो इसलिए मैं और प्रभुपाद जी की कृपा से मैं भक्ति अभी भी कर रहा हूं तो इसलिए आप सबका वरिष्ठ होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं आपको बता सकूं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए.
So if you're too lazy to pull your notebook out of your backpacks.
अगर आप इतने आलसी हैं कि अपने बैग में से अपने आप कॉपी भी नहीं निकाल सकते,
दिस इज कॉल्ड तमोगुण,
तो इसको तमोगुण कहते हैं.
इफ योर फाउंडेशन फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इज तमोगुण, हाउ यू कैन एडवांस, हाउ?
अगर आपकी भक्ति का आधार तमोगुण है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं?
कैन यू एडवांस?
क्या आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? नहीं.
Because what you're missing that I'm not missing is that these are the seeds of what's called a know-it-all attitude. Write it down. A seemingly insignificant thing like this is the seeds of a know-it-all attitude. Know-it-all. I already know this. That's okay. Fine. I know this. Yeah, I've got it down. I've got Krishna consciousness down. No problem.
तो ये लक्षण दिखाता है कि मुझे सब कुछ पता है. तो फिर ऐसे व्यक्ति के जो है उसको कॉपी निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, नहीं लगती. वह इसके लक्षण दिखाता है तो ये ठीक नहीं है. ये
practically every class you will hear something you never heard before, or if you did hear it you don't remember it. That's my guarantee that I'm making in front of deities.
तो मैं भगवान के सामने ये चुनौती से कह सकता हूँ कि हम कोई भी एक कक्षा में बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमें नई बातें सीखने को मिलती हैं. अगर हमने कोई बात सुनी भी हो तो हमें उसमें भी एक नई शिक्षा प्राप्त हो सकती है. तो बिना कॉपी के हमें नहीं बैठना चाहिए.
Now you're a little senior even though you're a yellow boy. You, how many years long time? 8 years or something? 12 years?
No, 5 years. 5 years.
5 years. Okay. 5 years. Beware. Beware of getting puffed up with pride of thinking I'm already senior to these other yellow boys. Beware. That will be your downfall.
तो महाराज कह रहे हैं कि आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप झूठे अहंकार से फूल ना जाएं कि मुझे 5 साल हो गए भक्ति में या कुछ साल बीत गए हैं भक्ति में और मैं बाकी भक्तों से वरिष्ठ हूं. ऐसे अहंकार की भावना आपके हृदय में कभी ना आए तो आप हमेशा इसे सतर्क रहना चाहिए.
यू ऑलरेडी न्यू एवरीथिंग अबाउट द पिलग्रिमेज ऑफ द क्रोज एंड पिलग्रिमेज ऑफ स्वांस. यू डिड नॉट नो. नाउ यू शुड फील वेरी फूलिश दैट यू डिडंट हैव योर नोटबुक आउट ऑफ योर बैग and ready to write, because I will tell you things and all others, the world seen and worries will tell you things that you don't know, otherwise what is the point?
So प्रार्थना है सब भक्तों से कि हम वरिष्ठ भक्त जो है आपको नई चीजें बताएंगे. जैसे महाराज ने भी बताया कि कमों का तीर्थ और हंसों का तीर्थ इसमें क्या अंतर होता है, शास्त्र का वाक्य है. तो आप सब जो है इसको ध्यानपूर्वक सुने और इसको लिखे.
First we begin with the conception of the pilgrimage of the crows. But that's the emphasis here, made by Ramananda Roy. It's the emphasis made by Srila Prabhupada. First, let's focus on what does this mean, anyways.
तो यहाँ पर हम लोग जो हैं वो ध्यान से इस चीज को समझेंगे कि कौनों का कीर्त का क्या मतलब है, जो हम यहाँ पर भागवत में भी सुनते हैं और प्रभुपाद जी भी हमें समझाते हैं.
This Prabhu over here, you. Yes, you weren't going to write anything down. So that means you know everything about it, right? No.
तो महाराज पूछ रहे हैं कि आप कॉपी नहीं निकाल रहे थे तो शायद आपको इस सिद्धांत के बारे में पता होगा. क्या तो आप बता सकते हैं इसके बारे में?
सो भगवान सेज, आई डोंट से भगवान सेज, फिल्थी डिस्कस्टिंग सब्जेक्ट मैटर्स आर द पिलग्रिमेज ऑफ द क्रोस. आई डोंट से भगवान सेज.
सो भागवतम कहता है कि जो व्यर्थ की बातें हैं, जो कृष्ण से रहित हैं, ऐसी बातें जो है वो कचड़े के समान है, जहां पर कौवे रहते हैं, निवास करते हैं, वहां विचरण करते हैं.
सो प्रभु, सिंस यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया व्हाट दिस इज ऑल अबाउट बिकॉज यू डिडंट हैव योर नोटबुक रेडी, सो यू नो.
सो महाराज पूछ रहे हैं कि शायद आप कॉपी नहीं निकाल पाए तो शायद आपको इसके बारे में पता होगा.
व्हाट डज पिलग्रिमेज मीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट? व्हाट डज इट मीन?
तो पंकज कुमार महाराज पूछ रहे हैं कि जैसे यहां पर लिखा है कि कौओं का तीर्थ, तो इसमें तीर्थ, तो महाराज पूछ रहे हैं तीर्थ क्यों कहा गया है? कौओं का तीर्थ जो कचड़े का स्थान होता है उनका, जो कृष्ण से रहित है, तो
व्हाट इज भगवान से पिलग्रिमेज? व्हाई?
महाराज जी पूछ रहे हैं, आप प्रश्न ध्यान पर सुनो, आप आंसर दे सकते हो, आप ध्यान पर सुनो.
नो आंसर.
महाराज पूछ रहे हैं कि ये कौओं का तीर्थ कहा गया है जो चीजें कृष्ण से रहित चीजें होती हैं वो बकवास के समान है, व्यर्थ के समान है, कचड़े के समान है, जहाँ कौए रहते हैं, तो उसको तीर्थ क्यों बोला गया? ऐसा कौओं का तीर्थ क्यों कहा गया?
Alright, you five year devotee, you're supposed to know the answer to this question. Why Bhagavad says pilgrimage? Yes, people of a filthy mentality. Very good. So, you did learn something in the past 5 years. Hariwa! So-called human beings who have got a filthy mentality, what kind of books they're reading?
So, जो तथाकथित जो भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो भौतिक किताबें पढ़ते हैं, नॉवेल पढ़ते हैं जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, जिसमें अधिकांशता भौतिक चीजों के बारे में वर्णन किया जाता
है। रबिश नॉवेल्स, चीप पेपरबैक नॉवेल्स।
हम देखते हैं कि वो ऐसी ऐसी किताबें पढ़ते हैं जिसमें व्यर्थ की और बकवास बातें लिखी होती हैं।
Nowadays, the younger generation is not interested in reading paperback books.
आजकल का जो आधुनिक पीढ़ी है वो तो जो आगे से बनी किताबें हैं वो पढ़ने में रुचि नहीं रखती।
Even the brightest students in universities, what is their pilgrimage?
So, जितने भी बुद्धिमान से बुद्धिमान भी हैं इस विश्व के आधुनिक विश्वविद्यालयों में, उनका भी क्या चीज स्थान है, वो भी क्या चीज पढ़ना चाहते हैं?
What is your answer, Prabhu? You.
What is your answer?
Brightest boys in university, you know them. What is their pilgrimage?
महाराज पूछ रहे हैं, महाराज पूछ रहे हैं
कि जो तो
महाराज जी पूछ रहे हैं कि जो आधुनिक पीढ़ी है वो क्या पढ़ने में रुचि रखते हैं।
Yes, cinemas, newspapers, magazines. Okay, very good. That's okay for starters. That's it.
I'm difficult to hear with that. Hello.
No, just the beginning.
You can wish for that.
Newspapers, magazines, cinema, television. That's just the beginning.
Ah, you can wish for that. चाहे अखबार हो, चाहे मैगज़ीन हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे रेडियो हो.
We're talking about the brightest university youth.
जो विश्वविद्यालय में सबसे प्रतिमान
right now, at least in India, we know the fashion, the taste, the crow-like taste of the best and brightest university students. What is their taste? Keep going.
तो अगर जो विश्वविद्यालय में भी आते हैं, विश्वविद्यालय में जो सबसे प्रतिमान भी विद्यार्थी हैं, तो उनकी भी रुचि किसमें होती है पढ़ने में?
You. Come on, weren't you listening to the question? Cars, mobile phones? Huh?
Modern gadgets.
Yeah, these are all things that are part of the pilgrimage of Prabhu, that's true.
So, because Sahi kaha Prabhu ne ki ye bhi unka teerth sthan hai, कि नए नए गाड़ी के विषय में सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मॉडर्न गैजेट्स के बारे में, मोबाइल फोन्स के बारे में।
Of course, there are certain gadgets that we can employ in devotional service that is no longer, contaminated.
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये हम आधुनिक चीजें भगवान की सेवा में लगाते हैं तो फिर वो कौओं का तीर्थ के समान नहीं।
This movie camera is being employed for recording Srimad Bhagavatam Katha.
जैसा देखते हैं सामने जो है ये आधुनिक कैमरा का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किसके लिए? कि भगवान की कथा को रिकॉर्ड करने के लिए।
एंड कैमरा कैन बी यूज्ड फॉर वेडिंग पिक्चर्स।
सो हम कैमरा का इस्तेमाल कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण की संबंधित पिक्चरों के लिए।
इज दैट इन द कैटेगरी ऑफ पिलग्रिमेज ऑफ क्रोस?
क्या वो कौओं का भी तीर्थ माना जाएगा?
नो, इट्स नॉट, इट्स सात्विक।
हाँ या ना?
Wedding, wedding cinema is the pilgrimage of the swans. Is that right?
जो शादी के सिनेमा जब शादी में जो खींचे जाते हैं क्या वो भी हंसों के
तीर्थ में जाएंगे? That was a trick question.
बड़ा पचीदा प्रश्न महाराज का था.
No, it's not the pilgrimage of the swans.
The world.
Look at how happy the people are after drinking wine and liquor. Excuse me, that's what goes on at weddings nowadays. They all get drunk. Give me a break. You're saying it's not the people of the growth. What are they doing at these weddings? They're eating meat. Certainly they're eating meat. So many meat eaters.
तो महाराज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप शादी में भी जाएं हालांकि उसका बड़ा अच्छा दिन हो सकता है लेकिन लोग वहां शराब पीते हैं नशा करते हैं मीट खाते हैं तो हम वो हंसों का तीर्थ नहीं सह
सकते वो भी
वो मदिरा पान करते हैं
यू स्टिल थिंक इट्स नॉट द पिलग्रिमेज ऑफ द क्रॉस
तो जो शादी में लोग मीट खाते हैं शराब पीते हैं उसका जो पिक्चर खींचते हैं जो लोग ऐसे जाते हैं क्या वो हंसों का तीर्थ है क्या
यू बिकेम कन्वर्टेड All of a sudden, he pretends he doesn't know English and he's on the hot seat.
No, he's saying, Maharaj, no, it is such wedding ceremonies are not pilgrimage for. It is pilgrimage of crows, not pilgrimage of swans.
Yes, but he changed his story. We're all witnesses.
So he's
he did 360 degrees on that one. He started out by saying that it was not the pilgrimage of the crows because it violates the whole idea of.
मैं इसकी नकल नहीं उठा सकता
समाज
कह रहा है कि जैसे तो जिसकी शादी होती है तो उसको तो बड़ा रोमांचकारी होता है उसके लिए एक नया प्रेम उसके जीवन में आता है उसके लिए एक नया रोमांस की बात होती है लेकिन वास्तविक रूप में वो एक कौनों का तीर्थ ही है क्योंकि मां मदुरा पान चलता है मार
पक्षी
तो मार बेसिकली ये समझाने की कोशिश करें कि व्यक्ति तो उस टाइम सातवें आसमान में होता है जब उसकी शादी होने वाली होती है लेकिन वास्तव रूप में तो वो कमों का तीर्थ के समान
Alright, so even weddings are pilgrimage of the crows. It seems like we all agree now, but before we didn't all agree.
तो हम आप समझ सकते हैं कि ऐसी शादी जहां पर सब नियम तोड़े जाते हैं चाहे वो उसके जीवन का एक महत्वपूर्ण दिन हो लेकिन वो भी
I mean, just consider the divorce rate now, you know, these weddings now. They all, everybody's happy because they're drinking liquor.
हम देखते हैं कि आजकल जो है वो डाइवोर्स बड़ी जल्दी हो जाता है और उसके कारण कई देखे जाते हैं कि दोनों ही मदिरा पान करते हैं अवैध संबंध करते हैं
सो दैट लिक्विड ड्रिंकिंग गिव्स यू ए टेम्पररी सेंस ऑफ हैप्पीनेस बिकॉज इट डल्स आउट द पेन टेम्पररी
तो जो ऐसा कभी डाइवोर्स का जो दर्द होता है तो व्यक्ति क्या करता है मदिरा पान या नशे में डूब जाता है वो उसको क्षणिक सुख देता है या उसे क्षणिक तरीके से उसको भुला देता है
So what is that called?
So उसको क्या कहेंगे?
Temporary pleasure that temporarily dulls out the pain is called what?
तो जो क्षणिक सुख उसको मिलता है उसको उस दर्द को भुलाने के लिए तो उसको क्या कहते हैं
सौभाग्य you look like you know. What is the answer? Chapala sukha.
बिल्कुल सही होता है सर के दामों का गुण है उसको कहते हैं चप्पल सुख
सो सुख मीन्स हैप्पीनेस इट मस्ट बी द रूट वर्ड ऑफ द वर्ड शुगर यू नो हैप्पीनेस और स्वीटनेस
तो सुख का मतलब खुशी आनंद मिठासपन
आई डोंट नो वेबस्टर्स डिक्शनरी वुड गिव द क्रेडिट टू संस्कृत आई डाउट इट दे आर वेरी क्रिपना यू नो दे डोंट लाइक टू गिव क्रेडिट टू इंडिया बिकॉज वेबस्टर्स Undoubtedly, it was originally a British publication. So why they would give credit to India in those days? They may have revised. Now they keep revising it. They might have started giving some credit to Sanskrit by now because they're studying in Cambridge University school children are now studying Sanskrit in UK. Yes.
तो जैसे हम बैचलर डिक्शनरी देखते हैं, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज डिक्शनरी देते हैं, तो कई शब्द अंग्रेजी में भी जो है संस्कृत से लिए गए हैं, लेकिन वो फिर भी इसका श्रेय संस्कृत भाषा को नहीं देते हैं, क्योंकि वो इंग्लैंड में प्रकाशित है। लेकिन अब हम देखते हैं कि ऐसे कई स्कूल्स में, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड में बच्चे जो है आज भी संस्कृत सीखना शुरू हो चुका है। कई बगलों से कई ऐसे वहां के लोग संस्कृत सीख रहे हैं।
You may doubt it, this is true. I've seen the videos. Somebody showed me off of Facebook or YouTube the videos of the children chanting Sanskrit in UK, and their teacher was a young woman on top of that, you know, teaching them Sanskrit, and they're chanting very beautifully shlokas and everything in UK. That's a big switch from the 1800s of British conception.
So, मैं आज कह रहा हूँ कि हो सकता है आपको विश्वास न हो मेरी बातों का, लेकिन मैंने देखा है कि एक वीडियो मैंने देखा था फेसबुक में कि इंग्लैंड के कैम्ब्रिज स्कूल में कई जो विद्यार्थी थे वो शिक्षा सीख रहे थे, संस्कृत सीख रहे थे, और उनकी जो अध्यापिका थी वो भी एक महिला थी, ब्रिटिशर थी, वो उनको संस्कृत सिखा रही थी। तो देखा जाए बहुत बड़ा परिवर्तन है उन जो 18वीं सदी के जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उनकी मानसिकता से, जो कि संस्कृत भाषा को बहुत निकृष्ट मानते थे या भारतीय संस्कृति को बहुत निकृष्ट मानते थे, अब यही अंग्रेज जो है उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं।
You know, the divorce, these marriages are breaking within 2 years. Where's the question of anything but Chapalasuka, beyond Chapalasuka? Unless it's Chapalasuka, why marriages are breaking within 2 years? Growing now, more and more, divorce and breakup within 2 years only. This is now, you know, it's almost coming to the point where it's socially acceptable. You know, but of course it's hell. This is not civilization. This is not human civilization. They say it's the finest civilization in history of the planet. Rubbish.
तो हम देखते हैं कि आजकल सिर्फ 2 साल ही होते हैं शादी को तो डाइवोर्स हो जाता है। अगर वास्तविक रूप में ये सुख शाश्वत होता तो डाइवोर्स क्यों होता? हम देखते हैं चपल सुख है, क्षणिक सुख है, इसलिए जो है एक लड़का लड़की बिछड़ जाते हैं या एक दूसरे के संग को त्याग देते हैं, और ऐसी सभ्यता को, ऐसी संस्कृति को आधुनिक मानते हैं, तो हम इस बात को कैसे स्वीकार कर सकते हैं?
As recently as 30 years ago, there was no such thing as divorce in India. As recently as 30 years ago, you were young people were in a different body at that time, perhaps in some other universe, so you weren't around, but I don't know, there's not much old timers, maybe, you might have been around, but you were a little kid, right? 30 years ago you were a little kid, yeah, so you wouldn't have paid attention.
तो मैं बता रहे हैं कि भारत में भी 30 साल पहले तक भी ऐसी बातें सुनी नहीं जाती थी डाइवोर्स की, जिसमें जो शादीशुदा पति पत्नी वो अलग हो जाते हैं। 30 साल पहले से सुनने को भी नहीं मिलता था। और ऐसे बता रहे हैं कि ऐसे तो यहाँ पर कई नौजवान युवक है जो शायद वो किसी दूसरे शरीर में होंगे, कहीं 30 साल के नहीं है, वो किसी दूसरे ब्रह्मांड के, किसी की दूसरी योनि में होंगे। लेकिन जैसे श्याम कृष्ण प्रभु जी हैं, कई वरिष्ठ भक्त हैं, तो वो शायद इतना अनुभव होगा कि ऐसी तो प्रथा कभी थी भी नहीं।
This gentleman with the white hair and spectacles, you sir. Yes.
तो महाराज रविंद्र जी महाराज आपको पूछ रहे हैं कि आपका भी ऐसा अनुभव होगा, महाराज जैसा आपसे पूछ रहे हैं, आपका भी ऐसा अनुभव होगा कि 30-40 साल पहले डाइवोर्स इतने ही दिखाई देते थे, आज के युग में दिखाई देते हैं, क्या आपका ऐसा मान्यता है? He's saying, Maharaj, 30-40 years ago, divorce rates were very low.
It was very low and very uncommon.
Yes, but that's the point. Very low and very uncommon.
But now the situation is extremely bad and people are considering it as a sort of a fashion now. But okay.
Let him translate.
So, my beast man, Ravinder Kabuti, he also said that 30-40 years ago, डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती थी, बहुत कम होता था, लेकिन आज के युग में हम देखते हैं कि फैशन भी जैसे हो गया, कि लोग जो हैं बड़ी जल्दी डाइवोर्स ले लेते हैं.
So now it is very common. It's coming to the point where it is almost socially acceptable.
Yes, it is socially accepted now. Basically, this is because of lack of fundamental religious teaching to the children.
तो प्रभु जी बता रहे हैं कि महाराज भी इसमें सहमत हैं कि आप ये तो समाज जो है ये समाज इसको स्वीकार करने लगा है कि ये बात इसमें कोई अटपटा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति दो तीन साल में भी डाइवोर्स हो जाता है. और इसका मूल कारण जो है हम ये देखते हैं कि क्योंकि लोगों को बचपन में जो है जो धार्मिक संस्कार नहीं दिए जा रहे जिसके कारण जो है वो इस अनजान तक पहुंचते हैं. Religious teachings in
Yes. Child lack of religious principles. But the people of India are very proud of talking about Dharma. They are very proud of the conception of Dharma. They know that India is the motherland of all civilizations in the world. Indians used to know, I mean your generation, they probably don't even know that, you see. The older generation, your generation they knew, see, how much education deteriorated in India, because they used to know that India was the motherland of all civilization on the planet. They used to know.
तो महाराज कह रहे हैं कि इसका मूल कारण क्या है क्योंकि जो धार्मिक सिद्धांतों को बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता. हालांकि भारतीय बड़ा गर्व करते हैं कि यह धर्म का देश है, धर्म भूमि है और पूरी जितनी भी दुनिया में संस्कृतियां हैं वो भारत से जन्मी है. लेकिन ये पिछले वर्ग के लोग जो है इससे सहमत है, लेकिन आधुनिक जो पीढ़ी है वो इसको भी नहीं मानती कि वास्तव रूप में भारत ही सभी धर्म सभी संस्कृतियों का उद्गम स्थान था.
And now you young people, you all have a witness in this gentleman. How old are you, sir? How many years old you are?
I'm 78 years old now.
78? You're pretty well preserved for 78. Very good.
Hare Baba! Hare Baba! So, Babaji is telling me, 78 years
old. You see, because you're religious, therefore you're doing better than the average person. Better.
So, Maharaj is telling me that you are not going to be dharmic. And we can see that Babaji is doing the bhakti in this time.
Bhagavad says in the age of Kali the maximum duration of life is 100 years.
Bhagavatam mein hum aisa padhte hain ki kaliyug mein jis zyada se zyada kisi vyakti ki umar hogi wo 100 saal hogi.
But anyone in the cities cannot live 100 years anymore. It's too contaminated.
Aur dekhte hain lekin aadhunik shaharon mein 100 saal jeena bada mushkil hai kyunki yahan har cheez dushit hai.
For you it doesn't matter. There's no point in living to 100 years. For you, because you're a Vaishnava, it doesn't matter. See, you don't have to live to 100 years. You already know the purpose of life. You already, at age 78, you already know the purpose of life. You don't have to live 100 years to get the purpose of life. You already know by the mercy of Srila Prabhupada and the devotees.
So, Maharaj is telling you, Prabhupada is telling you, that Prabhupada and the Vaishnavas, चाहे क्योंकि आप एक वैष्णव हैं, अगर आप 100 साल नहीं भी जीते तब भी कोई परेशानी नहीं है क्योंकि आप जीवन का लक्ष्य पता है और आप उसमें अग्रसर हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी और उम्र कितनी होगी.
There is a story. Don't live, don't die. Was it Narada Muni? Who was asking the question? He was traveling and asking different people. Might have been Narada. Different people asking them, you know, I forget exactly how it goes, but it's a classic narration. When he interviewed a butcher, they all wanted to know how long am I going to live or what is my situation.
तो शास्त्र में बहुत सुंदर कहानी आती है. महाराज कहते हैं शायद नारद मुनि इस चीज को कहते हैं, लेकिन शास्त्र में बहुत सुंदर कहानी आती है जिसको शिक्षा प्राप्त है, जिसमें एक संत जा रहे होते हैं तो एक बुचर या फिर एक कसाई उनसे मिलते हैं, पूछते हैं कि मैं कितने साल और जीऊंगा.
He told the butcher, don't live, don't die.
तो कसाई को बोलते हैं ना तुम जियो ना तुम मरो.
If he lives, his life is hell. and he's creating such severe sinful reaction. So the longer he lives, the more sinful reaction. This is already hell. He's already living in hell, surrounded by blood and dead bodies of animals. He's already in hell.
तो वो संत कहते हैं उनको उस कसाई को कि तुम्हारा जीना भी व्यर्थ है क्योंकि तुम जीव अगर और जियोगे तो ज्यादा पाप एकत्रित करोगे और तुम और जो तुम्हारा जीना भी है वो नर के समान है क्योंकि तुम जिस स्थान पे रहते हो खून है मृत शरीर है तुम्हारा जीना और मरना एक ही समान है तुम मरोगे तो नरक जाओगे और तुम जियोगे तो जो जीना भी तुम्हारा नारके के समान है नरक के ही समान है
Don't live because the longer the butcher lives, the more sinful reaction is going to accumulate. So don't live.
तो वो कहते हैं कि तुम जियो मत क्योंकि जितना तुम और जियोगे उतने तुम और जानवरों को काटोगे और पाप करोगे और पाप इकट्ठे करोगे
And don't die.
और तुम मरो मरना भी नहीं
Because as soon as you die, you'll be dragged with great force by the Yamadutas.
और जब तुम मर जाओगे तो यमदूत जो है बड़े वेग पूर्वक तुम्हें खींच के ले जाएंगे
Such. Sinful persons according to Bhagavatam 5th canto.
और भागवतम पांचवें संघ के हिसाब से ऐसे पापी जीवों को नर्क लोक में लेके जाया जाता है
They have to be dragged across red hot burning copper, you know.
और ऐसे पापी जीवों को भागवत में वर्णन है उनको खींच ले जाया जाता है उनको चलाया जाता है कि जो कॉपर को क्या कहते हैं
Just on our way.
जो गरम गरम तांबा जब वो लाल हो जाता है ऐसे तांबे में उस व्यक्ति को घसीट के ले जाया जाता है नरक लोक की तरफ
Just on the way to the court of Yamaraj. They haven't even got to the court of Yamaraj. That's just on the way. Correct?
अभी तक हम वो यमलोक तक पहुंचे ही नहीं ये भी तो रास्ता बताया जा रहा है जो तपते हुए तांबा से उसको निकाला जाता है तो रास्ता है यमलोक तक उसके बाद कहानी दूसरी है
You read fifth canto. It's red hot copper highway, is it? Yes. Red hot copper highway. So you're being tortured. You haven't even got to the court of Yamaraj yet. Already you're being tortured as you're being dragged. The Yamadutas are ineffective.
तो यमदूत जो हैं ऐसे पापी व्यक्ति को पीड़ित करने के लिए जो हैं वो ऐसे गरम गरम तांबे के रास्ते से लेके जा
रहे हैं. Write it down. You didn't know this. Did you know this? Did you know it? You knew it. Good. Did you know it? Huh? You knew it? Red hot highway, red hot burning copper on the way to the court of Yamaraj, you already knew that?
So you said Maharaj was red, something like this is red.
You read fifth canto Bhagavatam already? Or you heard some quotes?
You have heard from senior devotees.
Yes, that's it. You heard from other devotees. And by the time you're 50 years old, you'll reach Srimad Bhagavatam. You'll reach Srimad Bhagavatam by the time you're 50 years old.
So, aapne aap Bhagavatam paanchve skand pe pahunch gaye hain nahi?
No.
Nahi, aap Maharaj saying.
I'm being sarcastic because the devotees are not reading Srimad
Bhagavatam. मैंने आपसे गलत बोला महाराज कह रहे हैं कि महाराज एक सार्काजम ले रहे हैं उल्टे ढंग से बोल रहे हैं क्या आप 50 साल तक भागवतम पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे
Different places around the world, devotees are not reading.
और इसलिए कह रहे हैं कि मैं पूरी दुनिया भर में जाता हूँ और भक्त लोग शास्त्र का अध्ययन नहीं कर रहे
That's why I'm asking the question.
इसलिए महाराज ऐसा प्रश्न पूछ रहे हैं
Anyways, this is all part of the pilgrimage of the crows, but that answer, this red hot highway and all that, that's for the pilgrimage of swans, because that is Bhagavad Gita. Although it's describing something ghastly, but it's Bhagavad Gita. The red hot highway, red hot copper highway being dragged, that's from 5th canto Bhagavatam. So that's not the pilgrimage of crows, even though it's ghastly, it's not the pilgrimage of crows, that is the pilgrimage of swans. Otherwise, why are we reading Bhagavad?
समाज कहने जो वर्णन आता है ये पांचवें स्कंद भागवतम में आता है और ये जो वर्णन है ये कौओं के तीर्थ नहीं है ये भागवत में वर्णन है और भागवत जो है वो हंसों का तीर्थ है जिसमें नारके लोगों का वर्णन
है इफ यू फाइंड फॉल्ट इन द वैष्णवास That is also the pilgrimage of the cross. Write it down.
और इसको भी आप लिखिए कि अगर आप वैष्णवों में दोष देखते हैं तो वो भी गवों के तीर्थ के समान.
There are some senior so-called devotees who are obsessed over finding fault in the Vaishnavas, finding fault in the GBC, finding fault in sainted persons all over this kind of obsession, compulsive is the word.
तो ऐसे कहीं हम कई बार देखते हैं कि जो भक्ति में जो थोड़े वरिष्ठ हैं वो भी जो है वो ऐसे इस्कॉन में बाकी अन्य वैष्णवों में जीबीसी में और आंदोलन में जो है वो देव दोष देखने के आतुर हो जाते हैं या वो उनका एक तरीके से लत लग जाता
है. What never grasps the meaning.
उन्होंने शायद इस शब्द को सुना होगा अदोष दर्शन लेकिन शायद उस मतलब को नहीं समझते हैं.
Do you know the meaning, sir? अदोष दर्शन. You do know?
Is it?
Who does not find fault? Yes, very good. Arimaa! Especially in the Vaishnavas. That means even, you know, one should not unnecessarily find fault in the non-devotees even, unless there's a very compelling good reason. If they're meat eater, we will find fault, certainly. If they're wine drinker, we will find fault. Otherwise, even amongst the non-devotees, we should try to see good qualities.
Tumaj kehne ki adosh darshan ka bahut hi mahatvapurna gun hai. Adosh darshan ka matlab hota hai ki hum किसी में भी खोप या जैसे दोष नहीं देखें. वैष्णव में खासकर इवन जो अवैष्णव है जो अभक्त है उनमें भी हमें दोष नहीं देखना चाहिए. हाँ कि अगर बहुत ही कोई विशेष कारण है जैसे कोई मदरा पान कर रहा हो या मांस भक्षण कर रहा हो जीव हत्या कर रहा हो तब अलग बात है. लेकिन हमें नहीं तो अभक्तों में भी जो साधारण जनता है जो अवैष्णव है उनमें भी दोष नहीं देखना त्रुटि नहीं देखना चाहिए.
The next time you go by this garbage dump down the street, and those of you living in the other building, you have to go by every day. So you see the crows there. Now you should remember, just see how this is the pilgrimage of the crows, how they're eating filthy, dirty, disgusting things. Somebody who thinks they're advanced in Krishna consciousness, but is blaspheming the devotees, cannot see their good qualities, they are no better than a crow. It's clearly stated.
तो जो बात नई बिल्डिंग में रहते हैं प्रभुपाद भवन में रहते हैं तो हर रोज जो ये दृश्य देख सकते हैं कि कैसे कौवे जो है वो एक कचरे के स्थान पर रहते हैं उनका वो तीर्थ उन्होंने उनको बनाया हुआ है जिससे हम याद कर सकते हैं कि चाहे कोई भी दर्शकों में दोष देखता है गलती देखता है तो वो भी उसकी मानसिकता भी ऐसी कौवों के समान है जो कचरे पे रहते हैं वहां विचरण करते हैं.
Those are blaspheming the devotees of the Lord and consider themselves to be advanced in Krishna consciousness are doomed. They're doomed.
महाराज महत्वपूर्ण बात यह कह रहे हैं कि जो खुद कृष्ण भक्ति में उन्नत अपने आप को समझते हैं लेकिन साथ साथ वैष्णवों में दोष भी देखते हैं उनमें गलतियां निकालते हैं तो निश्चित रूप से उनका पतन होना अनिवार्य है.
So we have to be situated on this Adosha Darshana platform and we should be very conservative about finding fault. Very conservative about finding fault in Vaishnavas. Sometimes mistakes we have to point out, but we should be careful.
So Maharaj keh rahe hain ki hum sabko bahut saavdhani bratni chahiye is cheez mein, doosron mein kami nikalne mein. Haan, kabhi kabhi zarurat padti hai दूसरों की बेहतरी के लिए लेकिन अधिकांशता इसमें हमें बहुत सावधानी बरतनी चाहिए.
We are supposed to take up as Vaishnavas or aspiring Vaishnavas the pilgrimage of the Swans.
तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए क्योंकि हम एक वैष्णव बनना चाहते हैं हमारी ये इच्छा है तो हमें हंस का जो तीर्थ है उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए हमें हंस के जैसे बनना
चाहिए. Swans in this sewer river over here. Anybody seen any swans over there?
तो जो सामने नाला है वहां पर आपको हंस तैरते हुए दिखाई नहीं देंगे.
They won't go there.
वो वहां पर नहीं जाएंगे.
But the younger generation, unless they take up Krishna consciousness, they're doomed.
तो जो नई पीढ़ी है जब तक वो ऐसे विचारधारा नहीं स्वीकार करती, कृष्ण भक्ति स्वीकार नहीं करती, वो भी निश्चित रूप से उनका पतन होना आवश्यक है.
Because you gave so many examples of what the younger generation of the intelligent class, toppers in the universities, in many cases, toppers.
हमने चर्चा की आज कि चाहे जो आधुनिक विश्वविद्यालय हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें कोई बहुत बुद्धिमान विद्यार्थी भी होंगे, लेकिन उनकी क्या मानसिकता है यह हमने आज चर्चा की.
You give example of material things that they're into, but something very important that you missed.
और हमने आप लोगों ने बताया कई सारी चीजें, भौतिक चीजें जिसमें जिनके विचार में वो विचार करते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण चीजें आपने अभी तक वर्णन नहीं किया, नहीं बताया.
Toppers who are into pornography.
और ये जितने भी टॉपर होते हैं स्कूल के, ये अश्लील जो अश्लील चीजें हैं पोर्नोग्राफी, ये इस इनके इनके लत इनको लग जाती है.
So now we see that so many top university students, IIT, University of Delhi, and then this is going on all over the world. It's not like India has a patent on it, you know. This is going on all over the world.
तो पूरी दुनिया में हम देखते हैं, चाहे भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हो या दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी हो या पूरी दुनिया में जितने बड़े कॉलेजेस विश्वविद्यालय हो, लेकिन वहां पर ऐसे जो चाहे पढ़ाई में विद्यार्थी तेज हो, लेकिन सब अश्लील चीजें देखते हैं, अश्लील पिक्चर देखते हैं.
Very less the young men, they're frustrated because maybe they don't have a girlfriend yet, so they're so frustrated, you know. Or even if they have a girlfriend, they might still be looking at pornography. It's so bad. It's the nature of lust. It is the nature of lust. It's so bad. Even if they have a girlfriend already engaged in lust sex, still they may go on the internet and look at pornography. That is, lust is so devouring.
तो ऐसे जो युवक हैं निश्चित रूप से वो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, कुंठित होते हैं, क्योंकि हो सकता है कि उनके लिए कोई उनका पार्टनर या गर्लफ्रेंड ना हो अपने काम की पूर्ति करने के लिए, और अगर होती भी है तब भी जो है वो ऐसे अश्लील चीजें देखते हैं इंटरनेट के ऊपर, और जो है क्योंकि काम जो है उसका स्वभाव है कि वो जो है वो हमारा नित्य बैरी है, हमारा हानि पहुंचाने वाला है.
Somebody might say, Maharaj, you're being so negative.
कोई कह सकता है कि महाराज आप बहुत ही निराशावादी हैं.
Let you focus on the beautiful and good things in life.
क्यों ना हम जो अच्छी सुंदर चीजें हैं जीवन के उसके उसके बारे में चर्चा करें.
Some non-devotees might make this criticism.
कोई अभक्त ऐसे आलोचना कर सकते हैं.
Or even some neophyte devotees might say, this Maharaj is too heavy, come on, you know. Talk about something lighter.
कुछ कभी भक्त ऐसे कह सकते हैं, ये महाराज तो जो है ऐसी बातें करते हैं, निराशावादी चीजें बोलते हैं.
Yes, but as aspiring Vaishnavas, we're after Krishna's opinion. We're not after our own opinion. We're chasing after Krishna's opinion, God's opinion. We like it.
तो जो वैष्णव बनना चाहते हैं वो समाज की जनता की चिंता नहीं करते, वो जनार्दन की चिंता करते हैं. तो वो भगवान क्या मत रखते हैं वो उनके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बदले कि समाज क्या मत रखता
है.
तो अगर हम कभी ये विचार करें कि क्या किस कारणों से किसी का भक्ति से पतन होता है,
and Krishna replies, it is lust only, O Arjuna.
और भगवान बोलते हैं अर्जुना को कि वो काम है.
The all-devouring sinful enemy of this world, all around. See, same word that I just used. I said devouring, but I didn't make it up. Krishna says, God says. I don't say, God says. We just try to repeat what God is saying. That's our success.
तो भगवान भगवदगीता में हम कहते हैं काम ईर्षा क्रोध ईर्षा रजोगुण समुद्रवा महाशना महापापा गिदी अहमी गरिना, कि जो काम है हमें हमारा जो काम है भगवान की वाणी को दोहराना है, और भगवान ही कह रहे हैं जो काम है वो हमारा नित्य गैरी है और हमें हमारा हानि पहुंचाने वाला।
सो यू हैव चॉइस, वी ऑल हैव चॉइस, जीवा हैज चॉइस।
जीवा के बाहर हम सबके पास एक विकल्प है, जीवा का जो विकल्प होता है,
यू कैन चूज voluntarily the pilgrimage of the crows, or you can choose the pilgrimage of the swans, or as the Chaitanya Charitamrita is saying here, cuckoo birds after sweet things.
तो हम सबके पास एक विकल्प है कि क्या हम कौओं के जैसे बनना चाहते हैं और क्या हमारा तीर्थ कौओं का तीर्थ के समान है, या फिर हम हंस बनना चाहते हैं, या जैसे यहाँ पर लिखा है कोयल बनना चाहते हैं।
It's up to you. You've got this free will, and you can go either way. Even as a devotee, you can go either way, because there is no shortage of devotees who started out in the pilgrimage of the swans and ended up going into the garbage dumps like the crows. There's thousands of devotees have done that. Go return to intoxication, return to illicit sex. You know, going back to the pilgrimage of the crows.
तो हम इस बात का महाराज कह रहे हैं हमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कई जो भक्ति का अभ्यास कर रहे थे, कई ऐसे भक्त जो हैं वो हालांकि हंस जैसा बनना चाहते थे, लेकिन कुछ साल बीतने के बाद अगर सावधानी उन्होंने नहीं बरती जिससे वो कौओं के समान हो गए और कचरे में विचरण करने।
Try to understand, write it down. The entire material world is basically the pilgrimage of the crows. The entire material world is fundamentally the pilgrimage of the crows.
Maharaj kare is baat ko likhe. Jaise Chaitanya Mahaprabhu kehte the ki pura bhautik sansar bhi un kauon ke teeth ke saman hai, wo kachre ke dabbe ke saman.
But somebody might say, well, what about the heavenly planets? That doesn't seem like the pilgrimage of the crows.
तो कोई ये प्रश्न उठा सकता है कि महाराज तुम स्वर्ग लोकों को आप कैसे कह सकते हैं कचरे के स्थान से तुलना उनकी उनसे कैसे कर सकते हैं?
Fine. You can qualify to go up there. You live a life in Mother Buddha, stick your hand in a big bag chanting Nama Bharat. You can go to heavenly planets.
तो आप स्वर्ग लोक में जा सकते हैं, जाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप एक माला जाप करें, बस नाम अपराध करते जाएं तो आप स्वर्ग लोक की प्राप्ति तो कर ही लेंगे।
Your punishment for chanting Nama Bharat might be to remain in the material world for 14,300,000,000,000 years while your classmates, your other young boys, they went back to Godhead, you know, while you remain erotic on the heavenly planets for 14,300,000,000,000 years. That's called free will.
तो महाराज कहें कि आपका विकल्प हो सकता है कि आप नाम अपराध करते जाएं और आप सावधानी नाम बढ़ते हैं और पूरे ब्रह्मा जी के जीवन काल तक, जिसका गिनती जो है 40 ट्रिलियन और कुछ बिलियन साल है, तो आप इस बौद्ध संसार में सरते रहे और जो पीली धोती कुर्ता में भक्त है इनका भगवान जाते हुए देखें। हरि बोल।
For the sake of this recording, I say yellow boy means beginners in Krishna consciousness.
और मेरे कहने का उद्देश्य है जो पीली बस्तर में भक्त हैं, मतलब मेरा उनसे मतलब मैं इंगित कर रहा हूँ कि जो नए भक्त हैं कृष्ण भवन अमृत में।
Where the color yellow and they're from, that's what we mean by yellow boys for the sake of the recording.
तो पीले भक्तों पीले लड़कों का मतलब है कि जो अभी कृष्ण भक्ति में मित्र हैं।
So we'll stop there. जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय, शिष्य गोविंदाचार्य की जय, श्री जगन्नाथ स्वामी बलदेव सुपाद की जय, शिष्य कृष्ण भगवान हरि ब्रह्मा की जय, जय गोपाल हरि हरि बोल।
हे भक्ति माधुर्य गोविंद स्वामी महाराज की जय।